मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 16 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, दो दिनों पहले मैंने आपसे हरियाणा की जो एक खाप पंचायत है उसके द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में बताया था और आज मुझे बहुत से ऐसे मेल मिले हैं जिसमें उन्होंने उस बात के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है जिसमें मैंने कहा था कि मृत्यु भोज के बारे में जो बदलाव करने की बात खाप पंचायत ने कही है उसका एक बहुत अच्छा सकारात्मक अनुभव मेरे पास है। आप सब में से बहुत से स्टूडेंट्स ने और मेरे प्रिय श्रोताओं ने यह जिज्ञासा जाहिर की है कि सर प्लीज आप उस अनुभव के बारे में बताएं, तो आइए मैं उसी अनुभव से आज के इस लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत करता हूं। दरअसल यह उस समय की बात है जब मैं राष्ट्रपति भवन में था और मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर सतबीर सिंह। बहुत योग्य व्यक्ति, मतलब आप समझिए कि टाइपिंग में उन्होंने पूरी इंडिया से 3 बार गोल्ड मेडल लिया था, टाइपिंग, डिक्टेशन लेना और टाइपिंग, और इसके बाद उन पर बैन लगा दिया गया था कि नहीं अब आप इस कंपटीशन में बैठेंगे ही नहीं। उपराष्ट्रपति भवन में मेरा उनसे परिचय हुआ था और फिर जब मैं राष्ट्रपति भवन आया तब फिर मैं उनको अपने साथ लेकर किसी तरह से कोशिश करके मैंने उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति भवन में करा दी थी और वास्तव में वह उनकी योग्यता की देन थी, मेरा अपना कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हर कोई अपने पास रखना चाहेगा। ये दोस्तों योग्यता की ताकत होती है, जब हमें योग्यता होती है तो हम इनएविटेबल हो जाते हैं, हम दूसरों के लिए अपरिहार्य अनिवार्य बन जाते हैं और वो उसी तरह के व्यक्ति थे। उनके पिता का निधन हुआ और उनके पिता के निधन के बाद मेरे पास एक फाइल आई। दरअसल आप सब में से अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस के बारे में जानते होंगे तो केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में भी लगभग सभी जगह ये नियम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है उस सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत, हम लोगों के समय में वो 5% था, वह आपको सरकारी खाते में जमा कर, आपका खाता अपना ही होता है, सरकारी खाता नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो आपको जमा कराना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड। वो आपका ही पैसा होता है लेकिन वो कटेगा। दरअसल उसके पीछे रीजन यह है कि सरकार चाहती है कि आप थोड़ा थोड़ा बचत करें, जब ये थोड़ी थोड़ी जो बचत होगी यह आपके काम आएगी, बच्चों की पढ़ाई के समय, शादी ब्याह के समय, बीमारियों के समय या और भी जरूरत पड़ने पर काम आएगी। और ये जो पैसा आपका जमा होता है, देखिए है तो उस पर आपका ही अधिकार, लेकिन आप उसे जब चाहे तब नहीं निकाल सकते। जैसे बैंक अकाउंट में तो आपका पैसा है, आप जब चाहे जिस पर्पस से भी आप चाहे निकालिए, बैंक आपसे नहीं पूछती कि आप क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन जो GPF में आपका पैसा जमा है उसे आप अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते, आपको बकायदे अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के समय आपको कारण बताना पड़ता है कि आप यह पैसा क्यों निकालना चाह रहे हैं और उसमें बकायदे एक लिस्ट दी हुई है कि इन इन पर्पस से ही केवल आप अपने इस जमा पूंजी को निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास फाइल आई, उसमें उन्होंने जो पर्पस दिया था आप समझ गए होंगे कि पिता की मृत्यु हो गई है और उनके मृत्यु पर मृत्यु भोज देना है और उसके लिए मुझे 40,000 रुपए चाहिए। सोचिए कि 40,000 रुपए, ये बात है लगभग 95-96 की बात होगी। मेरे पास फाइल आई जो हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट नहीं कहना चाहिए, जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको फिर सैंक्शन करते हैं, उसकी अनुमति देते हैं, फिर तभी जाकर वो पैसा मिलता है। चूंकि सतबीर जी को मैं भी काफी मानता था और वो भी मुझे काफी मानते थे तो मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि आप ये बताओ कि 40,000 रुपए आप ले रहे हैं, आप अपने गांव में, वो हरियाणा के पास एक जगह है झज्जर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां के रहने वाले हैं और वहीं उनको ये मृत्यु भोज देना था। मैंने कहा कि ज्यादा अच्छा होगा कि मैं ये पैसा सैंक्शन करूंगा लेकिन आप इसके उपयोग के बारे में सोचिए। तो उनसे डिस्कशन हुआ और मैंने कहा कि आपके गांव में किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है सार्वजनिक रूप से, तो उन्होंने बताया कि पानी की बहुत कमी है, वहां की महिलाएं दूर दूर से पानी लेकर के आती हैं, पशुओं को भी पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो मैंने कहा कि अब इससे अच्छा अवसर आपको दूसरा नहीं मिल सकता कि आप वहां पानी की व्यवस्था कराइए और वहां एक शिलालेख लगाकर और उस पर अपने पिता का नाम लिखवा दीजिए। तो जब भी कोई पशु पानी पिएगा, व्यक्ति पानी पिएगा, पानी पीने के लिए लोग अपने घर में ले जाएंगे, तो याद रखिए कि जब जब लोगों की पानी की घूंट उनके गले से नीचे उतरेगी, मानकर चलिए कि आपके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। मित्रों, वो बहुत घबरा रहे थे इस निर्णय से, वो बहुत घबरा रहे थे। घबराहट इसलिए क्योंकि देखिए, उनको बात तो समझ में आई कि ऐसा किया जाना चाहिए, समझ भी गए, लेकिन डर इस बात का था कि गांव वाले क्या कहेंगे। और सच बात है कि गांव वाले देखिए परंपरा में चले आ रहे हैं, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि ऐसा भी तो किया जा सकता है। तो वो अपनी परंपराओं को जीते चले आ रहे हैं, उनको वही ठीक लगता है, या यूं कह लीजिए कि परंपराओं को तोड़ने में उन्हें डर लगता है कि कुछ अनिष्ट न हो जाए। तो अगर उस लिहाज से सोचे तो उनका भी दोष नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े समझदार हैं, जो गांव का नेतृत्व करते हैं, जो समाज में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि नियम कायदे बनाते हैं, जैसे कि खाप पंचायतें या कि दूसरे समुदाय, तो उनकी मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गांव का एक बहुत ही यथार्थ परक नेतृत्व करें, समय के हिसाब से बदलाव करने के बारे में सोचें। तो मित्रों, हिम्मत करके उन्होंने मेरी बात मानी, मैंने सैंक्शन कर दी और उन्होंने वही किया जिसके लिए मैंने कहा था। उन्होंने मृत्यु भोज नहीं कराया, जो भी थोड़ा बहुत किया हो, और उस पूरे के पूरे पैसे से वहां पानी की व्यवस्था की। और आप ताज्जुब करेंगे कि उस समय तो नो डाउट कि लोगों ने विरोध किया, गांव वालों ने, और खासकर उनके संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनका तो ज्यादातर विरोध होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि जैसे उनके अपने लोगों की बदनामी हो रही है, या कोई बहुत बड़ा विद्रोह किया जा रहा है, कोई विरोध किया जा रहा है, तो वो ज्यादा इसके अगेंस्ट होते हैं। लेकिन वो थोड़े से हिम्मती थे, उन्होंने यह कदम उठाया। और मित्रों, जो मुझे बाद में पता लगा कि लोगों ने उनके इस कदम की तो सराहना की ही की, बल्कि बाद में ये सुनने में आया कि बहुत से लोग अब इसी तरह के काम में आगे आने लगे। मृत्यु भोज की जगह जो भी वे थोड़ा बहुत अपने लेवल पर कर सकते थे, वह काम वे करने लगे। ऐसा मैं तो मेरे सुनने में नहीं आया कि वहां मृत्यु भोज बिल्कुल बंद ही हो गया हो, लेकिन परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है सुगबुगाहट, यानी कि पहला कदम उठाना। पहला कदम अगर उठाने का कोई साहस कर लेता है तो मान करके चलिए कि फिर बाद में बहुत से कदम ऑटोमेटिक तरीके से उठने लगते हैं, क्योंकि देखिए, जो जीवन है वो एक यथार्थ है, समय बदल रहा है। अगर इस बदलते हुए समय में हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, अपने तौर तरीकों को नहीं बदलेंगे, तो सीधी सी बात है कि समय के साथ हमारा तालमेल टूट जाएगा। और जब समय के साथ तालमेल टूटेगा तो बट नेचुरल है कि समय तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है और हम पता नहीं कितने साल पीछे की चीजों को लेकर के अब भी वही खड़े हैं। और जैसे ही हमारा यह तालमेल टूटेगा, मान करके चलिए कि हम अनगढ़ हो जाएंगे, हम लंगड़े हो जाएंगे, हम लाचार हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। मित्रों, कभी आप समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग समुदाय हैं, उनको ध्यान से देखिए, अपने आसपास के लोगों को ही देखने और समझने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि जो लोग समय के साथ जितना अधिक तालमेल बैठा कर चल सके हैं, वे आज उतना अधिक आगे हैं, हर दृष्टि से आगे हैं। आपको कंपैरेटिवली उनका स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मिलेगी, उनमें पढ़ाई या लिखाई के स्तर ज्यादा अच्छे मिलेंगे, वो ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे होंगे, क्योंकि समय ठहरता नहीं है, ठहरते हैं तो हम ठहरते हैं। तो मित्रों, इसके माध्यम से खासकर मैं अपने प्रिय युवा श्रोताओं से खासकर अपील करना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान प्राप्त करने के दौरान आपने देखा है कि समाज, आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय का इतिहास पढ़ते हैं, आप इतिहास की शुरुआत करते हैं और इतिहास के अभी तक आते हैं, तो आप देखिए कि कितनी चीजें बदल चुकी हैं और क्रमशः बदलती चली गई हैं। अगर कोई चीज बिल्कुल सत्य रही होती तो वो आज भी नहीं बदलती। वो चीजें बदली हैं, हमारी परंपराएं बदली हैं, रीति रिवाज बदले हैं, हमारे विश्वास बदले, हमारी आस्थाएं बदली हैं, तो स्वाभाविक है कि अब भी हमें लगातार बदलते रहने के बारे में सोचना चाहिए। और यह दायित्व मैं समझता हूं कि हम पढ़े लिखे लोगों का शायद ज्यादा बनता है कि हम सब जहां भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, जिन सीमाओं में भी हैं, इस बदलाव की शुरुआत करें। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।